लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। मनुष्य यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। पुत्र, समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंखों से ओझल मत करो, जिससे वे तुमको जीवन प्रदान करें और तुम्हारे कंठ की माला बने। इस प्रकार तुम अपने पद पर निरापद आगे बढ़ते रहोगे और तुम्हारे पैर को ठोकर नहीं लगेगी। तुम निर्भय होकर लेटोगे और लेटने पर तुम्हें सुख की नींद आएगी। तुम न तो अचानक आ पड़ने वाले आतंक से और न दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा होगी। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के 21 से लेकर 26 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। तीसरा अध्याय प्रज्ञा को जीवन वृक्ष और मनुष्य को धन्य घोषित करता है, जिसे ईश्वर ने प्रज्ञा का वरदान दिया और अपने आशीर्वाद के काबिल समझा। वस्तुतः सूक्ति ग्रंथ का लेखक तीसरे अध्याय के 21 से लेकर 26 तक के पदों में इस बात को रेखांकित करता है कि प्रभु सेवक को सदैव प्रभु से सहायता मिलती रहती है। प्रभु ईश्वर अनवरत उसके साथ रहते और उसका पथ प्रदर्शित करते हैं। लेखक का परामर्श है कि व्यक्ति ईश्वर से मिली प्रज्ञा पर ध्यान दे, उसे अपनी आंखों से ओझल न करे, जिसके लिए परिश्रम के साथ साथ ईश्वर और पड़ोसी प्रेम की जरूरत रहा करती है। मनुष्य स्वीकार करे कि ईश्वर की प्रज्ञा और विवेक मेरी अपनी बुद्धि और विवेक से कहीं अधिक श्रेष्ठ कर है। ऐसा कर ही मनुष्य अपने जीवन को अर्थ प्रदान कर पाएगा तथा सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार अपने पथ पर निरापद आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके पैरों को कभी भी ठोकर नहीं लगेगी। वह निर्भय होकर चैन की नींद सोएगा और दुष्टों का आतंक उसे नहीं डरा पाएगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर उसके साथ होंगे और हर प्रकार के जाल से उसके पैरों की रक्षा होगी। सार यही कि ईश्वर उन लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं जो ईश प्रज्ञा का सम्मान करते हैं तथा ईश आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वर उनका पथ प्रदर्शन करेंगे, वे उनका विश्वास और भरोसा होंगे और उन्हें किसी का भय नहीं सताएगा। उनकी नींद सुखमय होगी, वे अचानक आतंक से भयभीत नहीं होंगे जिससे पापाचार करने वाले डरा करते हैं। सूक्ति ग्रंथ के लेखक का परामर्श है कि मनुष्य भलाई में लगे, परोपकार करे तथा ईश्वर की आशीष और ईश्वर की कृपा का पात्र बनकर सुख और शांति का अनुभव करे।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
आगे सूक्त ग्रंथ के तीसरे अध्याय के अंतिम 9 पदों में भ्रातृ प्रेम की प्रशंसा कर लेखक कहता है कि भाई से प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रभु के आशीर्वाद का हकदार होता है। 27वें और 28वें पदों में हम पढ़ते हैं, पुत्र यदि यह तुम्हारी शक्ति से बाहर न हो तो जिसके आभारी हो उसका उपकार करो। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह मत कहो, चले जाओ फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। श्रोताओ, बुद्धिमान राजा सुलेमान अपने पुत्र को संबोधित कर उससे आग्रह करता है कि वह समय रहते जिसका आभारी है उसके प्रति आभार प्रकट करे। सुलेमान ने इस पद में पुत्र को ईश्वर से मिली बुद्धि और विवेक पर लगातार ध्यान देने का महत्व बताया। पुत्र से वह कहता है कि यदि तुम्हारे पास कुछ है और यदि तुमसे तुम्हारा भाई या तुम्हारा पड़ोसी कुछ मांगे तो तुम हिचकिचाओ मत, बल्कि उदारता पूर्वक अपने भाई और पड़ोसी की मदद करो। उसे यह मत कहो कि वह चला जाए फिर कभी आए, या फिर आज नहीं कल दूंगा आदि आदि। कहने का तात्पर्य यही कि प्रज्ञा और विवेक से काम लेने पर व्यक्ति जीवन के हर रास्ते पर सफल और सुखी हो सकता है। प्रज्ञा और विवेक उसे परोपकार हेतु प्रेरित कर भाई और पड़ोसी की सहायता के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यही है प्रज्ञा के सदुपयोग का वास्तविक लाभ, यही है अनमोल धन जिसके लिए मनुष्य को अनवरत प्रयत्न करते रहना चाहिए। आगे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के 29 से लेकर 32 तक के पदों में लेखक दुराचरण के विरुद्ध पाठकों को सतर्क कर कहता है, जो पड़ोसी तुम पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो और उसके किसी मार्ग पर पैर मत रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपना मित्र बना लेता है। पड़ोसी के विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो का अर्थ यही है कि किसी प्रकार से पड़ोसी की हानि मत होने दो, विशेष रूप से उस पड़ोसी की जो तुम पर विश्वास रखता हो उसके विश्वास को मत तोड़ो। श्रोताओ, प्रभु ईश्वर की प्रज्ञा हमें सबके प्रति अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करती है, और चूंकि हमारी खुद की सुरक्षा और संरक्षा हमारे पड़ोसी की भलाई पर निर्भर है, इसलिए सुरक्षा के खातिर हम अपने पड़ोसी से अकारण ही बैर न करें, अकारण ही उसकी बुराई न करें, अकारण ही उसका बुरा न चाहें। प्राचीन व्यवस्थान और हिब्रू भाषा के विद्वान अमेरिका के प्रोफेसर ब्रूस वॉल्टके के अनुसार षड्यंत्र न रचे क्रिया का अर्थ ठोस रूप से हल जोतना होता है, तथा लाक्षणिक रूप से इसका तात्पर्य सदैव नीति नियमों पर चलना और भलाई करने हेतु सदैव तत्पर रहना होता है। लेखक आगे कहता है, जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो और उसके किसी मार्ग पर पैर न रखो। इसका अर्थ साफ है, उस मनुष्य से बैर मत करो जिसने तुम्हारे विरुद्ध किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया है, अकारण ही उसके प्रति बदले का भाव मत रखो। संत पॉल भी यही परामर्श देते हैं। रोमियो को प्रेषित पत्र के 12वें अध्याय में संत पॉल लिखते हैं, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें, बुराई के बदले बुराई नहीं करें, जहां तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें, आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें। और फिर इब्रानियों को प्रेषित पत्र के 12वें अध्याय के 14वें पद में लिखते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। और फिर तिमोथी को प्रेषित पत्र में लिखते हैं, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा है कि कार्डिनल परिषद ने सोमवार को एक ऑनलाइन सभा में भाग लेकर सिनोडालिटी पर अगली धर्माध्यक्ष धर्म सभा पर विचार किया। सोमवार को कार्डिनल परिषद की ऑनलाइन सभा में संत पापा फ्रांसिस ने भी भाग लिया। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कार्डिनल ऑस्कर रोड्रिगस मारा डियागो के कार्य की संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुति के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सिनोडालिटी पर आगामी सिनेट के कार्य की शुरुआत पर प्रकाश डाला। संत पापा ने अपने वक्तव्य में अपने दो पूर्व भाषणों पर गौर किया। 2015 में धर्माध्यक्षों की धर्म सभा की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर दिए अपने भाषण और पिछले रविवार को रोम धर्म प्रांत के विश्वासियों को दिया गया संदेश। बयान में कहा गया है कि पोप ने इस बात को स्पष्ट किया कि चिंतन के केंद्र में एक खास विषय का गहरा होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कलीसिया को जीने का एक तरीका सीखना, हर स्तर पर एक दूसरे को सुनना और प्रेरितिक मनोभाव, विशेषकर याचकवाद और रूढ़िवादिता के प्रलोभन का सामना करना। उसके बाद उपस्थित कार्डिनलों ने सिनोडल रास्ते के विभिन्न आयामों पर अपने अपने चिंतन प्रस्तुत किए एवं सांप्रदायिकता और पक्षपातपूर्ण हितों को दूर करने की आवश्यकता बतलाई। आगामी सभा दिसंबर में निर्धारित की गई है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि कार्डिनल परिषद के सदस्य एक साथ आकर सभा में भाग लेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 23 सितंबर को परम धर्म पीठ के लिए डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राजदूत लुइस इमिलियो का प्रत्याय पत्र स्वीकार किया। नवनियुक्त राजदूत लुइस इमिलियो सन 1985 में यूनेस्को के उपराजदूत प्रतिनिधि थे। उन्होंने मेडिकल विभाग में बहुत अधिक सेवाएं प्रदान की हैं तथा अर्जेंटीना के प्रेरितिक राजदूत भी रहे हैं। नवनियुक्त राजदूत लुइस इमिलियो का जन्म 20 जून 1943 को हुआ था। उन्होंने न्यूयॉर्क के फारधाम यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान की डिग्री प्राप्त की है तथा सांतो डोमिंगो यूनिवर्सिटी से लाइसेंसेट किया है एवं शिकागो के लोयला यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। स्पेन के मैड्रिड से उन्होंने मनोविज्ञान में विशिष्टता भी हासिल की है। यूरोप में कार्तिक परिवार संघों के महासंघ के अध्यक्ष विंचेंसो बासी ने इटली और स्पेन में जनसंख्या के शीत पर संत पापा फ्रांसिस की चिंता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा समाज में परिवार की भूमिका को प्रोत्साहन एवं पहचान देने वाले उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। संत पापा फ्रांसिस ने बार बार परिवार की रक्षा करने, जनसंख्या के संकट वाले देशों में जन्म दर में सुधार और पीढ़ीगत स्थिरता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला है। परिवार संघ के लिए गठित मंच द्वारा आयोजित जन्म के सामान्य दर पर माई में हुई सभा में संत पापा ने जोर दिया था कि एक समाज जो जीवन का स्वागत नहीं करता जीना बंद कर देता है। उन्होंने इताली समाज को प्रोत्साहन दिया था कि वे जीवन और मानव व्यक्ति से शुरू करते हुए आगे बढ़े। उसी तरह जीवन के लिए 43वें इताली दिवस पर 7 फरवरी 2021 को पोप फ्रांसिस ने जनसंख्या के शीत के लिए चिंता व्यक्त करते हुए इटली वासियों का आह्वान किया था कि वे इस पर ध्यान दें तथा सुनिश्चित करें कि जनसंख्या के शीत का अंत हो और नए शिष्यों के साथ नया बसंत आए। हाल ही में हंगरी और स्लोवाकिया की अपनी 34वीं प्रेरितिक यात्रा के समापन पर ब्रातिस्लावा से रोम के लिए उड़ान भरते हुए पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संत पापा ने एक बार फिर इस विषय पर बातचीत की थी और इटली एवं स्पेन में जनसंख्या के शीत के बारे में चिंता व्यक्त की थी। हंगरी के राष्ट्रपति जोनास तेर के साथ मुलाकात से संबंधित एक पत्रकार के सवाल का उत्तर देते हुए संत पापा ने याद किया था कि राष्ट्रपति ने हंगरी के एक नियम के बारे उन्हें बतलाया जिसका उद्देश्य है युवा दंपतियों को विवाह करने और बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करना। संत पापा ने आगे याद किया कि फ्रांस में भी इसी तरह का कानून है, हालांकि उन्होंने कहा कि हंगरी इसमें आगे है। संत पापा ने यह भी गौर किया कि हंगरी में अधिक युवा और बच्चे उपस्थित थे तथा कहा कि उनके लिए चुनौती नौकरी पाने की हो सकती है ताकि वे नौकरी पाने के लिए विदेश न जाएं। यूरोप के लिए कैथोलिक परिवार संघों के महासंघ के अध्यक्ष विंचेंसो ने वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में संत पापा के जनसंख्या चिंता पर प्रकाश डाला। जनसंख्या शीत के महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए संत पापा के प्रति आभार प्रकट करते हुए बासी ने कहा कि यह पूरे यूरोप की समस्या है जिसने हंगरी और फ्रांस जैसे देशों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या समस्या केवल आज के लिए एक प्रश्न नहीं है बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे देश हमारे महाद्वीप के भविष्य के लिए। सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट अनुसार 2021 के शुरू से करीब 62 बच्चों की मौत हुई है। मौत का कारण कुपोषण, बीमारी, सफाई की कमी एवं आगजनी बतलाई गई है। 2 बच्चों की हत्या हुई है। सीरिया के 2 शरणार्थी शिविरों में साल 2021 के शुरू से लेकर अब तक करीब 62 बच्चों की मौत हुई है जो विदेशी नाबालिगों को वापस लाने की तत्काल आवश्यकता की पुष्टि करता है, जिनका जीवन असुरक्षित है और जो भविष्य की संभावनाओं से वंचित हैं। यह चेतावनी सेव द चिल्ड्रन संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट मैं कब जीना शुरू करूंगा में दी गई है। 2021 के शुरू से ही प्रति सप्ताह नाबालिगों में कम 2 मौतें हुई हैं। कारणों में कुपोषण, बीमारी, खराब स्वास्थ्य की स्थिति और टेंट के अंदर आग लगने जैसी घटनाएं शामिल है। सेव द चिल्ड्रन ने रिपोर्ट में बतलाया है कि अल होल में हिंसा एक दयनीय घटना है, हत्याएं, हत्या का प्रयास, हमले और आगजनी एक सामान्य घटना है। लेबनान की 11 साल की मरियम के समान कई बच्चे हैं जो इस तरह का जीवन अधिक नहीं जी सकते क्योंकि यह सिर्फ इंतजार है। इस बीच देश पूर्ण रूप से आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा है। भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक जैव नैतिकता मंच स्थापित किया है। CCBI द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह एक सलाहकार मंच है जो CCBI के ईश शास्त्र एवं धर्म सिद्धांत आयोग के तहत काम करेगा। नए मंच की स्थापना 20 और 21 सितंबर 2021 को आयोजित CCBI कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक के दौरान की गई। रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो येसु समाजी मंच के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।